الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی آیت نمبر 100 سے ہم آغاز کر رہے ہیں آج اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حسرت آمیز جملہ بولا تھا کہ کیا جب بھی کوئی یہ عہد باندھیں گے تو اپنے اس عہد کو توڑ دیں گے بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے یہاں ہم نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا آگے فرمایا بلما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون تو جب ان کے پاس ایک رسول آ گیا اللہ کی طرف سے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب ان کے پاس ایک رسول آ گیا ہے اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم ان کے پاس جو پیشین گوئیاں ہیں تورات اور انجیل میں ان کے مطابق آ گیا ہے تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا ہے پسے پش ڈال دیا ہے کس کو کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے کانہم لا یعلمون اور ایسے بن رہے ہیں کہ جیسے ان کو کسی بات کا علم نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد باندھا تھا کہ جب تورات کی یہ پیشین گوئیاں پوری ہوں گی تو تم اس پر عمل کرنا ایمان لانا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان پر یہ واضح ہوا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان پر یہ بھی واضح ہے کہ یہ پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہیں تو اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا کا مطلب ہے کہ نہ تورات کی بات مانی نہ قرآن کو مانا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر نہیں کیا بلکہ اللہ کی کتاب کا ذکر کر دیا کتاب کا ایک دوسرا شیڈ بھی ہے جو قانون کے معنی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون دے رکھا تھا کہ میرے رسولوں کو تم نے ماننا اس کو بھی فراموش کر دیا تو تینوں پہلوؤں سے یہ لفظ بہت اہمیت کا حامل ہے کتاب اللہ کا کہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانا یعنی نہ تورات کو مانا نہ قرآن مجید کو مانا تورات کے احکام کو نہیں مانا تو جزواً انکار کلی انکار ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب جو نہیں آئی قرآن مجید اس کو بھی نہیں مانا اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو نہیں مانا تینوں پہلوؤں سے انہوں نے اللہ کی کتاب کے پس پش ڈال دینے کے یہ مفاہیم پیدا ہوتے ہیں یعنی کامل معنی میں انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو یہاں جامع مفہوم ہے الگ الگ تینوں میں سے کوئی لینا پڑے گا یا جامعیت کے ساتھ کہ ہر پہلو سے اللہ کی کتاب کو اپنے پس پش ڈال دیا اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں لا یعلمون جانتے ہی نہیں ہیں یہ جو بھی قومیں ایمان نہیں لانا چاہتی یا جو افراد ایمان نہیں لانا چاہتے ان کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ یا تو بال کی کھال اتارتے ہیں یا سیدھا سیدھا لا علمی کا اظہار کرتے ہیں بال کی کھال اتارنے والے آپ کو آج ہی مل جائیں گے اور سیدھا سیدھا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ ادھر بات کریں گے ادھر اس میں سے پتہ نہیں کیا کیا نتیجے نکال کے کیا کیا معنی نکال کے آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ ادھر کہیں جی اللہ ایک ہے اچھا جی آپ نے اللہ کو دیکھ لیا کہاں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ذرا دکھائیے تو صحیح کوئی کارنامہ کچھ چیز تو بتائیے وہ اس طرح سے مین میخ نکالیں گے حالانکہ زندگی کی بے شمار چیزیں وہ اس کے بغیر مان رہے ہوتے ہیں ایک ملحد کو ایک مذہبی آدمی نے کہا کہ تم اپنی بیوی کی محبت ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہے تو اس نے کہا ہاں میں ثابت کر سکتا ہوں تو اس نے کہا کیسے اس نے کہا اس لیے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتی ہے رات کو گھر واپس آ جاتی ہے تو اب یہ جو محبت کا یہ ثبوت ہے اس سے محبت کیسے ثابت ہوئی بس اس کا گھر آنا ثابت ہوا تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک محبت پائی جاتی ہے ایک تعلق پایا جاتا ہے تو کائنات کو بھی ایسے ہی خدا نظر آتا ہے کائنات میں کہ اس کی تخلیق دیکھ کر ہم خالق تک پہنچتے ہیں خالق نظر نہیں آتا, محبت کہیں نظر نہیں آتی. اس کے کچھ اظہار ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ تعلقات کو نبھایا جا رہا ہوتا ہے, کچھ ذمہ داریاں ادا کی جا رہی ہوتی ہیں, کچھ دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے. یہ اس کے علامات ہیں. ان علامات سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں محبت پائی جاتی ہے, یہاں نفرت پائی جاتی ہے, یہاں غصہ پایا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. اسی طرح عقل کے بارے میں بتائیں ذرا, کہیں عقل دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. تو عقل کا ثبوت کیا ہے؟ آدمی کا رویہ. وہ عاقل آدمی کی طرح بات سن رہا ہے, عاقل آدمی کی طرح بات کر رہا ہے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ عاقل ہے, اور ایک دوسرا آدمی پاگلوں کی حرکتیں کر رہا ہے تو کہہ دیں گے کہ اس کے پاس. تو آثار دیکھ کر ہم کچھ چیزیں مانتے ہیں. تو کائنات میں خدا کا وجود آثار دیکھ کر ہے, لیکن انبیاء کا وجود اللہ تعالیٰ حسی لیول پہ, ٹینجیبل سطح پہ ثابت کر دیتے ہیں. اس میں ایک دلیل اللہ تعالیٰ یہاں سورہ البقرہ میں, کیونکہ یہ یہود زیر بحث ہیں, قریش زیر بحث نہیں ہیں, تو یہود کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ ان کی اپنی کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے, پیشین گوئیاں موجود ہیں, ان پیشین گوئیوں کے مطابق وہ تشریف لے آئے ہیں, تو اب ان کو ماننا ہوگا. نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے, سزا پائیں گے. تو چنانچہ اب یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہمیں تو پتہ نہیں, اچھا کون سی پیشین گوئیاں, کس قسم کی, کہاں سے پتہ چلا. وہ اس طرح سے تاثر دے رہے ہیں, اور یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آنا تھا, بنی اسماعیل میں آنا تھا, عربوں میں آنا تھا, ہمیں تو نہیں معلوم. یہ وہ تاثر ہے وہ یہ دینا چاہتے ہیں. غالباً یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات نہیں جانتے. اب یہ تو ہو گیا ان کی داستان, وہ جو اللہ تعالیٰ سنا رہے تھے کہ انہوں نے ایمان کیوں نہیں لائیں گے, پیچھے وجوہات بتائی ہیں. اب جو کچھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اپنے اوپر نازل کردہ چیز پر ایمان لاتے ہیں, باقی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک مکمل کر دیا کہ پیشین گوئیاں موجود ہیں ان کی تورات انجیل میں, تب بھی نہیں مان رہے. اس کا مطلب کہ اپنے اوپر نازل کردہ چیز بھی نہیں مان رہے. اب صرف مان نہیں رہے بلکہ ایک جرت اور کر رہے ہیں, وہ آگے اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہیں. وَتَبَوْ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. انہوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بجائے ان چیزوں کی پیروی شروع کر دی جو شیاطین لکھتے لکھاتے تھے, پڑھتے پڑھاتے تھے. یہ ایک لمبی داستان سنائی جاتی ہے, وہ اس کا موقع نہیں ہے تفسیر کے اندر. وہ یہ کہ جنات اور جادوگر جو تھے سلیمان کے زمانے میں تھے, اور ہاروت و ماروت جو فرشتے تھے, ان کی جو بھی تعلیمات تھی وہ دونوں کی, یعنی شیاطین کی بھی اور ہاروت و ماروت کی بھی, وہ کچھ لوگوں نے لکھ کر حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے چھپا دی تھی, اور بعد میں نکال دی جب ان کا زمانہ ختم ہوا, اور پھر وہ استعمال کرتے رہے. یہ اس طرح کی کہانیاں بہت ساری ہیں. پھر کالا جادو اور نوری علم وغیرہ وغیرہ کے تصورات پیدا کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہا ہے کہ جو شیاطین پڑھتے تھے, یہ ایک الگ چیز ہے جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے, اس کو ہم جادو کہہ سکتے ہیں, جو بھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. جادو کے بارے میں جان لیجئے کہ جادو کے دو حصے ہیں. ایک جادو جو ہے وہ شعبدہ بازی ہوتی ہے, اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا. مثلا کبوتر پکڑا ہوگا, غائب کر دیا, تو وہ شعبدہ بازی ہوگی, کبوتر حقیقت میں غائب نہیں ہوا ہوتا. اس کے اوپر بہت اچھی چیزیں دیکھنے کو پڑھنے کو مل جائیں گی, کیونکہ دور جدید میں ہر چیز کو کتابی شکل دی جاتی ہے, تو یہ چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ جادوگر کیا کرتے ہیں, کہ وہ کچھ شعبدے کی چیزیں ہیں, کچھ ہاتھوں کے کمالات ہیں, کچھ حرکتوں کے کمالات ہیں, کچھ انسانی دماغ کے کمالات ہیں, کہ وہی چیز دیکھتا ہے جو اس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں پہ اوپر یعنی دھوکہ سا ہو جاتا ہے آنکھوں کو. تو یہ شعبدہ بازی ایک جادو کا وہ حصہ ہے جس کو منتروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, کہ ادھر ہم منتر پڑھیں گے ادھر کچھ ہو جائے گا, یعنی کچھ الفاظ بولیں گے اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا. یہ جو تصور ہے یہ غیر حقیقی تصور ہے, اس طرح کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں مانی جاتی ہے, اور صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم مانتے ہیں, مسلمانوں کے اندر پوری پوری لڑیاں ہیں علماء کی جو اس چیز کو مانتی ہیں. मेरे ख्याल में ये दूसरी किस्म का जादू कहीं नहीं पाया जाता, सब शोबाबाजी, सिर्फ शोबाबाजी। आजकल की ज़ुबान में ट्रिक्स कह लीजिए कि वो आपके पास होते हैं, आप उसको दूसरों को धोखा देते हैं। आखिर हम टेलीविज़न पे फिल्म देख के क्या कर रहे होते हैं, तस्वीरों की एक रील है जो पूरी चला दी जाती है, ऐसे लगता है जैसे हरकतें हो रही हैं, हालांकि वहाँ तो हरकत कोई नहीं हो रही, अलबत्त रील चल रही होती, जो भी पुराने ज़माने की रील, आजकल ज़रा और तसव्वुर हो गया है। तो हमारे बचपन में रीलें होती थी, उनको चलाते थे तो वो आदमी ऐसा लगता था जैसे हरकत कर रहा हो, तो ये आँखों को धोखा है, हकीकत में वो हरकत नहीं कर रहे, तस्वीरें स्टैटिक होती हैं बस, इसी तरह से है। तो ये आँखों को धोखा होता है, हम शोबदे में ये चीज़ें चलती फिरती देख सकते हैं, गायब होती देख सकते हैं। कबूतर को टोपी में से निकलते हुए कागज़ डाल रहे थे, कबूतर निकाल दिया, कबूतर डाला था कागज़ निकाल दिए, ये हम होता हुआ देख रहे होते हैं, हालांकि हमें धोखा दिया जा रहा होता। तो ये तो होता है कलिमात के ज़रिए से। अब हमारे यहाँ फिर एक दो तस्वर हैं, एक ये कि मंत्र जो है ये कुछ जादू और जिन्नात की मिले भगत से होने वाला कोई इल्म है जिसके ज़रिए से इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो मसलन मैंने कहा कि इमरान साहब के पास जाकर ना इनकी जेब से पैसे चुरा लाओ, और इधर मैंने जुमला बोला, मंत्र पढ़ा, उधर इनके पैसे निकाल लिए जिन साहब ने, तो जादू हो गया। एक तसव्वुर जादू का ये है। दूसरा जादू का तसव्वुर ये है कि कलिमात के अंदर असर है, जैसे ही मैं लफ्ज़ बोलूँगा, मतलब छू मंत्र मैंने बोला तो छू हो गया, इनको कुछ अछूत लग जाएगी। अब दूसरा तसव्वुर ये है, ये जो दूसरा तसव्वुर है ये हमारे बहुत अच्छे उलमा भी इसको मानते हैं कि कलिमात की कोई तासीर होती है। हमेशा याद रखें कि कलिमात की एक तासीर है, लेकिन वो लघवी तौर पर है। मसलन मैं आप लोगों से कहूँ चलो भी चलते हैं, तो आपके ऊपर एक असर होगा, चलो चलते हैं, ये अल्फाज का असर है, वाज़े सी बात है। वाले साहब जब गुस्से में डांट रहे होते हैं उसका एक असर है, वाले साहब मोहब्बत से प्यार से कोई बात कर रहे हैं उसका एक असर है। तो कलिमात का भी असर है, और कलिमात के साथ हमारे जेस्चर और रवैये और हमारे हालात का भी ऊपर असर होता है। लेकिन ये असर कि मैं घर बैठे बैठे लिखूँ एक मंत्र और आपके ऊपर उसका असर हो जाए, ये कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो जादूगर टाइप लोग हैं ये इसको कहते हैं कि ये पाया जाता है, जिसके नतीजे में ये आपको डराते हैं और आप खौफजदा होकर बीमार हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसमें आपको बहुत सारे वाक्यात सुनाए जाएंगे कि जनाब उन्होंने मेरे घुटने पर हाथ रखा और बताया कि तुम्हारे कलेजे में वर्म आया हुआ यानी चर्बी चढ़ी हुई है, तो तुम ज़रा इलाज कराओ जाके। और मैंने जाके टेस्ट कराया तो वाकई हमारे कई हुक्मा ऐसे गुजरे हैं तबीब जिनको कहते हैं कि वो आदमी का रंग देखकर बता देते थे कि तुम्हें ये मर्ज लाइक है, तो इस जादूगर को क्यों नहीं समझते कि ये भी तबीब है, उसको जादूगर क्यों समझते हैं। तो कितने ही तबीब ऐसे होते हैं कि जो क्याफे से आपका चेहरा देख कर, आपकी नब्ज देख कर, बीमारी की सही तशखीस कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने मरीज देखे होते हैं और इतना कुछ देखा होता है कि उनको एक ममारसत सी हो जाती है, पहचान सी हो जाती है। मुझे खुद याद है कि हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे, 200 प्रोफेसरों की मीटिंग थी, ये यूनिवर्सिटियों में सालाना तौर पे होती है। तो 200 लोगों की राउंड टेबल लगी हुई है, एक प्रोफेसर साहब इस कोने में बैठे हैं और एक वो दूसरे कोने में। वो जो प्रोफेसर दूसरे कोने में बैठे हुए हैं वो एक खातून है जो डॉक्टर है। उन्होंने इन प्रोफेसर साहब को पूछा, यानी दूर कोने पर बैठे हुए, कि प्रोफेसर साहब आपको कभी हार्ट अटैक हुआ? तो उसने कहा कि नहीं। प्रोफेसर साहब ने जो इधर बैठे हुए थे उनका नहीं। थोड़ी देर बाद गुफ्तगू चलती रही, मीटिंग चलती रही, थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर गए तकलीफ़ के साथ कराहते हुए। पता चला कि उस वक्त उनको हार्ट अटैक हो रहा था, और वो दूर बैठी हुई डॉक्टर साहिबा महसूस कर रहे थे कि ये इस वक्त हार्ट अटैक की कैफियत में से गुजर रहे हैं। तो अब क्या चीज़ है, उनका तजुर्बा है कि उन्होंने इतने हार्ट के पेशेंट देखे हुए हैं, उनको पता है कि उनकी शक्ल सूरत क्या होती है जब हार्ट अटैक हो रहा होता है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, अब ये जादुई चीज़ें लगेंगी, गैबदानी लगेगी कि क्या बात है। तो ये चीज़ें इसका एडअप कर देती हैं, हालांकि ये जादू नहीं होता, ये क्याफा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो रेत पर पांव का निशान देखकर बता देते थे कि ये औरत का है कि मर्द का है। अजीबोगरीब बात है ना। इसी तरह अरबों का एक बुज़ुर्ग, उसका नाम इस वक्त नहीं है, वो कहते हैं कि अपने बेटे के साथ जा रहा था, वो बुज़ुर्ग नाबीना थे, यानी बड़ी उम्र की वजह से बिनाई ख़त्म हो चुकी थी। तो कहता है बाप, बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे इस तरह की हवा महसूस हो रही है, तो देखो सामने उफक पर काले बादल हैं कि सफ़ेद बादल हैं। तो बेटे ने कहा जी हाँ, कुछ सफ़ेद हैं कुछ काले हैं। चंद कदम और आगे चले, कहते हैं बादल हमारे करीब आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। नबीना आदमी, वो कहता है करीब आ गए हैं। कहता अच्छा, फिर कोई गार ढूंढो, बारिश होने वाली है। देखियो, कहते हैं मैं, उसने बच्चे ने इधर से देखा कि कौन सी जगह हो सकती है, तो एक खो सी मिली, उसमें बैठ गए और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। तब ये जो चीज़ें हैं ये जादू नहीं है, ये तजुर्बात हैं। मेरी अपनी नानी जान जो थी वो साया देख के बता देती थी, और गर्मी और सर्दियों में कि इस वक्त 12 बज गए हैं, इस वक्त 4 बज गए हैं, इस वक्त 2 बज गए हैं, यानी घड़ी देखनी नहीं आती थी उनको। घड़ी की टाइम सुन सुन कर और साये देख देख कर उनके जहन में टाइम सायों के साथ जुड़ गया हुआ था, यानी वो साया देख कर घड़ी वाला टाइम बताती थी। तो ये अब पुराने लोगों की, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ें बड़ी महारत से करते हैं, तो वो सियानापन इल्म अब उसको जादू के साथ गैबदानी के साथ जोड़ दिया जाता। आगे चलकर मैं अल्लाह ताला के एक जुमले की वजाहत करूँगा कि शोबदे में आप धोखा खा सकते हैं, ये तो इंसान के साथ होता है, लेकिन कोई जादू मंत्र वाला आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये वाज़े तौर पर जान लीजिए, किसी तवहम का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, किसी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा करता हूँ जादू दो लोगों पर असर नहीं कर सकता, एक साइंसदान जो मादियत परस्त है और दूसरे मोमिन जो खुदा परस्त है, इनके ऊपर जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। जादू आपकी नफ्सियात से खेलते हैं। मशहूर हो जाएगा कि जी फलाने पीर साहब जो है बड़े ज़बरदस्त हैं, आप चले जाएंगे उनके पास, वो आपको धोखे में डालेंगे, उनके मरीद कहानियाँ सुनाएंगे, आप भी बीमार होकर आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आयतें पढ़ लीजिए, फिर मैं वजाहत करता हूँ मज़ीद। फरमाया कि इन्होंने बजाय इसके कि नबी करीम सल्लम की पैरवी करते, इन्होंने शयातीन की लिखी हुई उन तालीमात की पैरवी करना शुरू कर दी। बदकिस्मती देखी कि नबी की पैरवी करनी चाहिए थी, तौरात की करनी चाहिए थी, तो उन्होंने शयातीन की पैरवी शुरू कर दी। अला मुल्क सुलेमान, जो शयातीन पढ़ते थे हजरत सुलेमान के मुल्क के रेफरेंस से, बादशाहत के रेफरेंस से, क्योंकि हजरत सुलेमान जो हैं उनको ज़माने में हारूत और मारूत का मामला भी था, और उनके जो मौजज़ात हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं कि जिन्नात बना रहे हैं महल्लात और पता नहीं क्या, कुछ हवाएं उनके कंट्रोल में हैं, वो तख्त बिल्कीस का मंगवा लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उनको लगता है कि शायद ये जादूगरों के कोई बादशाह किस्म की हस्ती हैं। तो अब इन शयातीन ने हज़रत सुलेमान का नाम लेना शुरू कर दिया। वो जो बादशाहत हज़रत सुलेमान को मिली थी ना, उसी के वसीले से, उसी के तवस्सुत से, उसी के रेफरेंस से ये पढ़ते पढ़ाते थे। तो ये अब अहले किताब इस बात को मानते थे। अल्लाह ताला ने सबसे पहला काम ये किया कि हज़रत सुलेमान की बरात ज़ाहर करें। फरमाया वमा कफर सुलेमान, हज़रत सुलेमान ने कभी ऐसा कुफर नहीं किया कि वो शयातीन की चीज़ें पढ़े पढ़ाएं, जादू सीखें सिखाएं, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। वलकिन शयातीन कफर, लेकिन शैतानों ने कुफर किया था, उन्होंने ये चीज़ें सीखी सिखाई थी। युअल्लिमून नास सेहरा, वो लोगों को जादू सिखाते थे। तो एक चीज़ ये हो गई, हज़रत सुलेमान के नाम पर उनकी बादशाहत के रेफरेंस से जो उनको इक्तदार मिला हुआ था इन चीज़ों पर, जिन्नात पर और हवाओं पर, और वो बरखिया जो उनका तख्त लेकर आ गए बिल्कीस का, वो सारा कुछ उसके हवाले से कि वो जो जादू था ना हज़रत सुलेमान के पास, उसके तर्ज की चीज़ हम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने वादे कर दिया कि उनके जादू नहीं था, तो मौजज़ात थे, जो भी था वो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम था, ना कि जादू था। उसके बाद दूसरी चीज़ भी सिखाते थे। वमा उनजिला अलल मलेकैन, वो इल्म भी सिखाते थे जो दो फरिश्तों पर उतारा गया था बाबिल में, हारूत और मारूत पर। अब ये बाबिल जो है वो हज़रत सुलेमान का इलाका उस तरह से नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि बाबिल का जो इलाका था वहाँ दो फरिश्ते उतारे गए थे। बाबिल और फ़लस्तीन में, कनान में वह से फ़र्क है। तो बाबिल जो है वो हज़रत सुलेमान का इलाका नहीं है, तो बेबिलोनिया जो है उसके अंदर बहुत सारे उलूम इस तरह के चलते थे, सिफली किस्म के, तो गालिबन वहाँ पर दो फरिश्ते भी आजमाइश के लिए नाजिल किए। अब हो सकता है वहाँ कोई नबी हो या कुछ मामला हो, तो हज़रत सुलेमान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत में देखा जाए, जो अल्लाह ताला ने बाबिल का लफ्ज़ इसलिए बोला है कि वो इलाका ही और है, और हारूत और मारूत ये दोनों फरिश्ते थे। इनके बारे में जो हमारे कहानी सुनाई जाती है, बड़ी बदकिस्मती है, अल्लाह ताला दो फरिश्तों का जिक्र कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो खुद सरकश हो गए थे, शैतानी चीज़ें सीखने सिखाने लग जाए थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में कहीं नहीं कहा कि वो बुरे हैं, बल्कि अगले जो जुमले आ रहे हैं उससे पता चलता है कि बड़े नेक साले थे, कोई जादू नहीं सिखाते थे, कुछ नहीं सिखाते थे। उनके ऊपर एक इल्म नाजिल किया गया था, वमा उनज़िला अलल मलकैन, जादू नाजिल करता इल्म नहीं है, जो अल्लाह की तरफ से उन पर नाजिल किया गया था वो इल्म सिखाते थे। और ये सारा काम बाबिल में हो रहा था, और फरिश्तों का नाम हारूत और मारूत था। अब देखिए कि उनकी नेकी का अल्लाह ताला ने वाज़े किया, वमा युअल्लिमाने मिन नाहदिन, वो किसी को नहीं सिखाते थे, हत्ता यकूला, जब तक कि ये बात ना कह लेते उनको कि इन्नमा नाहनो फितना, हम आजमाइश के लिए उतरे हैं, यानी वो आगाह कर देते थे। अगर सरकश होते तो ये कहने की ज़रूरत थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन फरिश्तों को खामखा बदनाम किया गया, वो अच्छे खासे साले फरिश्ते थे। इन्नमा नाहनो फितना, हम आजमाइश हैं। फितने का मतलब उर्दू वाला नहीं है, फितना उस चीज़ को कहते हैं जिसके पीछे लगकर आदमी गुमराह हो सकता है, या आजमाइश। आजमाइश खुद एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आदमी गुमराह हो सकता है, हक को छोड़ सकता है, हक के रास्ते से हट सकता है, और वो भी फितना है जिसमें ज़बरदस्ती किसी पर जुल्म करके उसको दीन से फेरा जाए, हक से फेरा जाए, वो भी फितना है। तो इस वजह से फितने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह फसाद ही होगा, फितना ही होगा, या कुछ शरारती होगा, नहीं, कोई भी नेक से नेक चीज़ भी फितना हो सकती है। किसी के लिए पासदार होना फितना बन सकता है, उसके लिए आजमाइश का सबब बन जाएगा, उसकी पासदारी, वो अब किसी का बदला नहीं लेना चाहता, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहता, दूसरे उसको खा जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में कई लोगों की मिसालें हैं कि अपनी शराफत की वजह से दूसरे उनके ऊपर जुल्म करते रहे और वो उसी शराफत के साथ दुनिया से रुखसत हो गए, तो उनके लिए अपनी शराफत फितना बन गई, आजमाइश बन गई। तो ये इस मानी में अच्छी चीज़ें भी फितना बन सकती हैं, बुरी चीज़ें फितना बन सकती हैं। तो वो कहते थे कि हम फितना हैं, यानी हमारे पास, हमें जो इल्म दिया गया है वो तुम्हारे लिए आजमाइश का सबब है, तुम इस आजमाइश में नाकाम हो सकते हो और कामयाब भी हो सकते हो, तो इसलिए तुम कोशिश करो कि इस चीज़ को ना सीखो, फला तकफुर, तो इसको सीख कर इसके नतीजे में कुफर ना करो। तो फ़ैयतअल्लमून मिनहुमा, अब ये बदबख्ती थी इनकी जो वहाँ लोग रहते थे, वो बदबख्ती ये थी कि वो इन ये लोग जो थे वो सीखते इन दोनों फरिश्तों से, मा युफर्रिकून बही बैनुल मरई व ज़ौजी, मियाँ बीवी के दरमियान जिससे जुदाई डालते, वो चीज़ें सीखते थे। तो फरिश्तों का कोई कसूर नहीं था, सीखने वाले सीखते ही सीखना ही वही चाहते थे कि हमें कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएं कि जिससे मियाँ बीवी के दरमियान हम फितना डाल सकें। तो अब ये जो हारूत और मारूत का कसूर कुछ नहीं, सीखने वालों का कसूर है, और वो वाज़े करते थे कि हम आजमाइश के लिए उतारे गए। अब आजमाइश जो कि हमें मालूम नहीं कि पूरी तारीख क्या थी, अहले किताब ने भी उसको महफूज नहीं रखा पूरी तरह कि ये क्या मामला था, तो इसलिए हमें नहीं मालूम। हो सकता है कि बाबिल में, जैसे मौलाना इस्लाही वगैरह ने लिखा है कि जादू वगैरह का चलन ज़्यादा था, तो मुसलमानों को उनका मुकाबला करने के लिए इल्म दिया गया हो, लेकिन बजाय इसके कि ये उस जादू का मुकाबला करते हैं, इन्होंने भी गलत कामों के लिए उसको सीखना शुरू कर दिया। अब ये कितनी गिरी हुई बात है कि एक कौम मोमिन हो और मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने के लिए इल्म सीखती फिर रही हो। इसमें आप इनकी घटियापन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हारूत और मारूत के पास चीज़ें सीखने जाते थे, यानी कोई इल्म सीखते, कोई चलो टेक्नोलॉजी सीखते या कोई जादू ही सीखते कि भाई हम भी अपना कारनामा करें और हम भी लोगों को बताएं कि हम भी ताकतवर लोग हैं, तुम्हारा जादू इतना ताकतवर नहीं है। नहीं, वो तो मसला ही कोई नहीं था। सीखते भी क्या थे कि वो जो जोड़ा ना बड़ा खुशहाल रह रहा है उसके दरमियान जुदाई डालते हैं, मेरा भाई जो है ना उसके घर में नाचाकी हो जाए, मेरी पुफी जो है उसके घर में नाचाकी हो जाए। ये जो है ये बहुत ही गिरी हुई सूरत हाल है। और ज़्यादा खुश ना होइए, हमारा भी अपनी कौम का हाल भी यही है। अब देखिए अगला जुमला बहुत अहम है, अगला जुमला बहुत अहम है और वो पूरी इस दास्तान के लिए यानी एक बुनियादी कलीदी हैसियत रखता है। फरमाया वमा हुम बेजार रीना बही मिन नहदिन इल्ला बेज़निल्लाह, कि ये जो मर्जी सीख रहे थे ये किसी को उस इल्म के ज़रिए से नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर ये कि अल्लाह का इज़्ज़न हो। इस जुमले को अहमियत से समझें, इसको बिलअमूम इग्नोर किया गया इस वाक़े में, बिलअमूम मुफसरीन ने इग्नोर किया है और इस मानी में ले लिया कि अच्छा पानी भी तो बेज़निल्लाह ही प्यास बुझाता है ना, ठीक है, तो मैंने जो पिया है तो ये बेज़निल्लाह पिया है, मेरे गले में जो इसने तरी पैदा की है वो भी बेज़निल्लाह की है, इसमें कोई शुबा नहीं ऐसा कि हर चीज़ का जो भी अमल है वो बेज़निल्लाह है। लेकिन ये जुमला बोलने का क्या मतलब है? ये जुमला बोलने का एक ख़ास पहलू है, वो ये कि ये जादू और जो यहाँ बात असल में हो रही है हारूत और मारूत के इल्म की, ये जो इल्म है ये अल्लाह ताला ने नाजिल किया था तो ये खिलाफ़े कायदा था। खिलाफ़े कायदा का मतलब है जो दुनिया का ज़ाबता चल रहा है उसके खिलाफ था। इसके अमल करने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का इज़्ज़न मौजूद हो, इसके लिए ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं असर करेगा जैसे मैंने पानी पिया तो प्यास उतर गई, अल्लाह का अज़ली अब्दी इज़्ज़न है इसके लिए कि पानी ने प्यास बुझानी है, वो मुझे कोई हलाल का पिला दे तब, हराम का पिला दे तब, उसने प्यास बुझानी बुझानी है। लेकिन ये जादूगर जो कुछ सिखा रहे थे और हजरत और हारूत और मारूत जो कुछ सिखा रहे थे ये हर अमल के लिए अल्लाह की इजाज़त चाहिए थी, इसलिए हारूत और मारूत को उतारा था। अगर इल्म काफ़ी था तो बस दो जुमले नाजिल कर देते और सारे लोग इस्तेमाल करते फिरते। नहीं, वो फरिश्ता जब कहता होगा कि अब ये सीख जाओ अब अल्लाह का इज़्ज़न आएगा तुम ये काम कर सकते हो, नहीं तो वो कुछ नहीं करेगा। इससे मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि अगर हारूत और मारूत का नाजिल करदा इल्म अल्लाह के इज़्ज़न के बगैर काम नहीं करता तो जादू कैसे कर सकता है। इसलिए कुरान मजीद ने अक्सर जगहों पर यह जुमला बोला है कि ला युफ्लहु साहिर मिन हैसु अता, जादूगर जहाँ से भी आ जाए कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए बंदा मोमिन जो कुरान मजीद की सायद पर यकीन रखता है उसको जादूगरों से डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने ज्योतिषी हों, जितने नजूमी हों, जितने जादूगर हों और वो आपको कह दें मेरी बात मानो नहीं तो भस्म कर दूंगा, पूरे इत्मीनान के साथ उठकर आ जाएं, कोई नहीं कर सकेगा आपको। ये दुनिया खुदा की दुनिया है, ये अंधेर नगरी नहीं है। मैं एक जुमला बोला करता हूँ कि बकरी तो आपको सींग मार के ज़ख्मी कर सकती है लेकिन कोई जादूगर सारे मंत्र इकट्ठे करके बोले तो आपको ज़ख्मी नहीं कर सकता, ये यकीन कर लीजिए, ये खुदा की बात है। लेकिन यहाँ ये जुमले जो हैं ये बस सरसरी तौर पर ले लिए जाते हैं। वयतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यन्फ़ौ, चुनाचे नतीजा क्या निकला कि ये जो हारूत और मारूत से सीखने वाले था लोग थे वो सीख थे जो उनको नुकसान देने वाली थी, फ़ायदा देने वाली चीज़ नहीं थी। अब ये अकीदे के अतबार से बात हो रही है, ये नहीं कि ऊपर जो मियाँ बीवी में जुदाई डालने की बात हो रही है उसके लिए नहीं आया, बल्कि सीखने वाले जो कुछ सीख रहे थे उनके लिए नुकसान का बायस था, वो तो कुफर वाली चीज़ें सीख रहे थे, जुदाई डालने वाली बातें सीख रहे थे, उसका नतीजा ये निकलना था कि अल्लाह की नाराज़ी मोल लेंगे। तो वह यतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यन्फ़ौहुम, तो वो नुकसानदेह चीज़ें सीख रहे थे, फ़ायदे वाली चीज़ें नहीं सीख रहे थे। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मालहु फिल आखिरति मिन खलाक़, उसको वाज़े कर दिया, क्योंकि ये जानते थे कि जो भी इन चीज़ों को तरजीह देगा, इन चीज़ों के पीछे पड़ेगा, उनको आखिरत में कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं। क्योंकि इस तरह की चीज़ें सीखना कि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने कबीरा गुनाहों में से, ये हमेशा याद रखिए कि मियाँ बीवी सिला रहमी का सबब है, मियाँ बीवी का रिश्ता छोटा रिश्ता नहीं है, दुनिया का आगाज माँ बाप से नहीं हुआ है, बच्चों से नहीं हुआ है, दो मियाँ बीवी से हुआ है, आदम और हव्वा से। दुनिया का असल रिश्ता ये है, उसके नतीजे में माँ बाप का रिश्ता पैदा होता है, ये छोटा रिश्ता नहीं है। इसी की बुनियाद से रिश्तेदारी कायम होती है, इसी से वालिद वालदा बहन भाई वजूद में आते हैं, इसी से अगली नस्लें पैदा होती हैं। तो असल रिश्ता क्या है? मियाँ बीवी का। इसके अंदर अगर इफ्तराक पैदा करता है कोई मुआशरा तो वो बेरहमी का शिकार होगा, वो ख़ानदानी रहमतों से महरूम हो जाएगा। तो इसलिए शैतान ने जब भी ये काम किया है, जब भी किसी तहजीब को मज़हब से उखाड़ना है उसने, तो उसमें मियाँ बीवी का रिश्ते को कमज़ोर करता है। ये याद रखिए हमेशा कि जो भी नामहरम औरतों के पीछे भागता फिरता है और जो औरत नामहरम मर्दों के पीछे भागती फिरती है, मज़हब से दूर होगी। ये आप किसी भी आदमी को, ये ना समझिए कि मैं कोई इल्हामी बात कर रहा हूँ, मेरे पास जितने लोग आते हैं तलाक के केसेस, एक बड़ी तादाद आती है, हफ्ते में दो तीन लोग आ ही जाते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो पीछे कहानी एक ही होती है अक्सर जगह पर। यानी ऐसी ऐसी अजीब कहानियाँ कि आदमी परेशान रह जाता है कि ये होता क्या है, क्यों ऐसा आदमी होता है। तो पाकीज़गी, इसलिए अंबिया जो हैं वो कहते हैं बावजू रहो, वो ऐसे नहीं कहते कुल्ली करो, वज़ू करो, पांच वक्त नमाज पढ़ो। ये वो तहारत जिस्म को और रूह को देता है कि जिससे आदमी पाकबाज रहता है। लेकिन अगर घर में नाचाकी हो जाए, मियाँ बीवी का निज़ाम दुनिया से उठ जाए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हर तरफ जहनी नापाकी वजूद में आएगी। ये जहनी नापाकी जो है ये आदमी को खुदा से दूर ले जाती है। आप अपने ऊपर तजुर्बा करके देख लें कि अगर आपका रुझान इस तरह की चीज़ों में है तो खुदा से दूर होते चले जाएंगे, इबादत से महरूम होते चले जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह से खींचती हैं कि आदमी इस काबिल नहीं रहता कि नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे। तो ये जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, ये सिला रहमी की सबसे बुनियादी इकाई है, इसी के ऊपर सारी बुनियाद खड़ी है ख़ानदान की। सिला रहमी का सारा निज़ाम इस पर खड़ा है। और अगर आप सूरह निसा में हम जाएंगे तो वहाँ अल्लाह ताला ने जुमला यही बोला है कि अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया है और तुम एक माँ और एक बाप की औलाद होते हो। सिलसिला यही है, दो ही गोया समझ लीजिए कि दो ही हकीकतें हैं, एक अल्लाह है हमारा खालिक है और दूसरे हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। दुनिया की दो ही हकीकतें, इन्हीं दो हकीकतों को अपना कर चलना, संभाल कर चलना दीन है। अगर आपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को नहीं निभाया तो दीन से बाहर निकल गए, अगर आपने इस ख़ानदान के साथ अपने रिश्ते को नहीं निभाया तो आप दीन से बाहर निकल गए। और इस ख़ानदान की बुनियाद मियाँ बीवी से होती है, जिसको यहाँ शैतान हमेशा इस्तेमाल करता। जहाँ जिस घर में मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी है, वहाँ दीन तो क्या ज़िंदगी का अमन भी कायम नहीं होता। तो इसको जितनी जल्दी हल करने की कोशिश कर सकें करना चाहिए। तो इसलिए शयातीन हमेशा इसके पीछे पड़ते हैं और अल्लाह ताला हमेशा कहते हैं कि सिला रहमी करो इसी वजह से। तो चुनांचे ये क्या सीखते थे? अपने लिए नुकसान की चीज़ सीखते थे, खुद आखरत के अतबार से भी और अपने ख़ानदान मुआशरे के लिए भी नुकसान की चीज़ें सीखते थे कि मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी डालें, हालांकि नाचाकी नहीं डाल सकते थे सिवाय इसके कि अल्लाह का इज़्ज़त हो। वाले बेसमा शरो बही अनफुसा, तो फरमाया कि कितनी ही बुरी चीज़ है जिन्होंने अपने लिए ख़रीदी है। लव कानू या लमून, काश ये जानते होते। जहाँ जानने जो है समझने के मानी में है, ये अरबी ज़ुबान में या लमून बहुत जामे लफ्ज़ है, ये जानने के मानी में, समझने के मानी में, परखने के मानी में, पड़ताल करने के मानी में, बात वाजे होने के मानी में, कई मानी में आता। तो वह लव कानू या लमून, काश ये समझते, गौर करते। तो ये अब जो जादू है इसके बारे में हमेशा याद रखिए कि ये बस एक दुनिया में एक पर्दा सा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इनकी दुकानें चलती हैं, वगरना कुछ भी नहीं है। और जहाँ जहाँ तक ताल्लुक़ है जन्नात का, वो आगे चलेंगे तो बातें वाजे होती चली जाएंगी। जन्नात के बारे में मैंने शायद आप लोगों के साथ किसी नशिस्त में अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिन लगी हुई चिटखनी नहीं खोल सकता, घड़े का ढक्कन नहीं उठा सकता, ऐसे पड़ा हुआ ढक्कन जो है वो नहीं उठा सकता, तो फिर वो आपके घर से आपको नुकसान क्या पहुँचा सकता है। यानी इतना छोटा सा काम तो उससे हो नहीं सकता कि घड़े का ढक्कन उठा ले और चटनी खोल दे, तो वो आपके घर से चीज़ें उठा कर ले जाए, आपको पागल कर दे, आपको नामर्द कर दे, आपको बेऔलाद कर दे, आपकी औलाद मार दे, ये कैसे हो सकता। तो ये सिर्फ कहानियाँ हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके बगैर हमारा कारोबार नहीं चलता मज़हब का। मज़हब के कारोबार को चलाने के लिए, माज़ा चाहता हूँ, मैं जय्यदुल्मा की बात नहीं कर रहा, ना अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं और फिर जय्यदुल्मा उनके असर में आ जाते हैं। कितनी ही चीज़ें हैं जो बुरे लोगों ने ईजाद की और अच्छे लोगों के दिमाग पर सवार हो गए, बेशुमार चीज़ें। अब फ़लसफ़ा तो अम्बिया ने नहीं दिया, उलमा ने नहीं दिया, लेकिन अपनी उम्मत के अंदर देखिए कि कितने बड़े बड़े लोग फ़लसफ़ी होकर फौत हुए, तारीख उठाकर देख लीजिए। यानी इमाम गज़ाली जैसा आदमी और इब्ने रुश्द जैसा ज़हीन आदमी और अबू अली सीना जैसे ज़हीन लोग कैसे हद पे चढ़ते हैं। मैं फ़लसफ़े को उस्मानी में बुरा नहीं कहता कि जिस्मानी, लेकिन वो एक उसकी बुनियादें मज़हब वाली बुनियादें नहीं हैं। यह ऐसा ही जैसे साइंस और फ़लसफ़ा, ऐसा ही मज़हब। मज़हब साइंस की जगह पे है और फ़लसफ़ा तख़य्युलात की जगह पे है, जो इंसान अपने ही ख्याल में चीज़ें सोचता है। तो अब उसको और मज़हब को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। हमारी जो फ़लसफियाना जहन है उसमें ये बात समझ नहीं आ सकती कि अल्लाह ताला बग़ैर खुदा के, बग़ैर बनाने वाले के बने हो। हमारे फ़लसफियाना अकल में ये बात समझ में नहीं आ सकती कि अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है कि जिसको किसी ने नहीं बनाया, ये समझ नहीं आ सकता। चुनाचे सारे के सारे फ़लसफ़ी ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पर वो एक ऐसी ज़ात का तसव्वुर करें कि जो बिल्कुल पहले दिन से मौजूद हो। और उसके लिए लफ्ज़ क्या बोलेंगे, अनमूव्ड मूवर, सबसे पहला सबब। तो क्या अल्लाह ताला सबसे पहला सबब है? जो सबब होता है वो उस चीज़ का हिस्सा होता है। अल्लाह ताला अपने बारे में ये नहीं कहते मैं सबब हूँ, वो कहते हैं मैं खालिक हूँ। तो कोई भी फ़लसफियाना जहन खालिक को नहीं मान सकता, ट्रांसेंडेंट खुदा क्रिएटर का तस्वर नहीं मान सकता। फ़लसफियाना जहन या बातुल वजूद में जाएगा या बिग बैंग में जाएगा। अब हमारे यहाँ जो मज़हबी फ़लसफ़ी होते हैं मुसलमान, वो दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते हैं। इब्ने रुश्द इकट्ठे करते करते फ़ौत हो गए, नहीं इकट्ठा कर सके। इमाम गज़ाली गलती निकालते निकालते बूढ़े होकर फ़ौत हो गए, नहीं कर सके। तो वजह क्या है? वजह यह है कि दो आग और पानी को इकट्ठा करने की वो अल्लाह ताला कर लेते हैं अपनी दुनिया में, इंसान कैसे कर सकता। तो मज़हब और फ़लसफ़ा, मज़हब और साइंस, ये बिल्कुल अलग 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 डोमेन की चीज़ें हैं। इनका इज्तिमा नामुमकिनात में से है। तो मज़हब जो है वो अकली मुशगाफियों पर नहीं खड़ा हुआ है, अकल को समझ आने वाली चीज़ है। अकल को समझ आ जाता है लेकिन वो अकली मुशगाफियों पर नहीं खड़ा हुआ, अकली मुकदमात पर नहीं खड़ा हुआ। ये आजकल के ज़माने में मुझे, ये जब मैं बात कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये पुरानी क़दामत परस्ती की बातें करता है, बेवकूफ़ी की बातें करता है। लेकिन सच्ची बात है कि मज़हब और फ़लसफ़े के मुताले के बाद मैं इसी जगह पहुँचा हूँ कि इन दोनों में बोधुल मशरकैन है, दोनों में बोधुल मशरकैन है। दोनों हमारे बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं, मौजूद भी हैं, फौत भी हो गए, कि खुदा को फ़लसफ़े के ज़रिए से साबित किया जा सकता है, खुदा को साबित नहीं किया जा सकता फ़लसफ़े से, पहले सबब को साबित किया जा सकता है, बस ये वाज़ह रहना चाहिए। साइंस के ज़रिए से भी पहले सबब को साबित किया जा सकता है, खुदा को नहीं। लेकिन हमारे पास जो फितरत है और हमारे पास जो तजिया करने की सलाहियत है, उसके ज़रिए से हम खुदा को साबित कर सकते हैं। दो चीज़ें अलग अलग, इन दोनों को अलग अलग ही लेकर चलना चाहिए। سائنس اور فلسفے سے پہلا سبب ثابت ہوگا بس. اور خدا پہلا سبب نہیں ہے, وہ خالق کائنات ہے. دونوں کا فرق اگر واضح ہو گیا ہو تو آگے چلتے ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے کتنی ہی بری چیز ہے جو اپنے لیے پسند فرمائی ہے, لہو کانو یا لمن کا یہ سمجھتے ہوتے ہیں. انسانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ جب وہ کسی فلسفے میں یا کسی تصور میں یا کسی مذہب میں یا کسی مسلک میں پھنس جاتے ہیں تو ان کا نظریہ ہوتا ہے اس کو جذباتیت کا حصہ بنا لیتے ہیں, اس کو جذباتیت کا حصہ بنا لیتے ہیں. اس کا سب سے اچھا مظاہرہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. سیاست کے دو دھڑے ہیں عوام کے اندر اور دونوں کے دونوں جذباتی ہیں. ایک پارٹی کی جذباتیت دوسرے پارٹی کی جذباتیت ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ دونوں طرف سے بیٹھ کر بات کریں, دونوں کو دیکھیں, تو وہ ادھر سے غلطیاں ادھر والے نہیں مان غلطیاں دیکھ رہے ہوں گے, ادھر والی پارٹی کی یہ لوگ غلطیاں دیکھ رہے ہوں گے, اپنی پارٹی کی غلطیاں نظر نہیں آ رہی ہوں گی, اور ادھر والے لوگ اپنی پارٹی کی بس خوبیاں نظر آ رہی ہوں گی, ادھر پارٹی کی غلطیاں نظر آ رہی ہوں گی لیکن اپنی خامیاں دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ جو جذباتیت ہے یہ انسانیت کی سب سے بڑی کمزوری ہے تمام انسانوں کی. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ سائنسدانوں کے اندر آ جائے, علماء کے اندر آ جائے, فلسفیوں کے اندر آ جائے تو سمجھیے کہ بیڑا غرق ہو گیا, سیاستدانوں کے اندر آ جائے تب بھی, کاروباری لوگوں کے اندر آ جائے. یعنی یہ بحثیں ہو سکتی ہیں کاروباری ہیں کہ ہم یہ طریقہ تو ہم نہیں اختیار کر سکتے, بالکل نیا طریقہ کیسے اختیار کریں. تو جذباتیت جب آپ کی حق کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو چلو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے, لیکن وہ باطل کے ساتھ اگر جڑ گئی ہے تو پھر تو جذباتیت جذبات سے مجرد ہو کر الگ ہو کر حقائق کو دیکھنا چاہیے. یہ سیکھنا بہت ضروری ہے. دنیا کا ہر انسان اسی طرح سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اپنے رائے سے حق سے الگ کر کے دیکھ سکے, وگرنہ قرآن نازل نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن جب یہ مطالبہ کرتا ہے کہ حق بات کو مانو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عام و خاص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جذبات کو جدا کر کے حقائق کو دیکھ سکے. تو میری اور آپ کی آزمائش یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مومن ہو جائیں جس ایمان پر ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے, بلکہ ہماری اصل آزمائش یہ ہے کہ جو غلط باتیں ماں باپ نے سکھائی ہیں ان کو درست کرتے رہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر جذبات نہ ہوں. تو یہ وہ پہلو ہیں جس کو یہاں اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہونا تو چاہیے تھا نا کہ عقل کی کام کرتے, کوئی سوچتے, کوئی غور کرتے, اپنے علماء کے پاس جاتے, سوالات کرتے, کوئی بحثیں کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہوتے اور پوچھتے کہ جناب یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات, ہمیں سمجھائیے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے جادو کا راستہ اختیار کر لیا. اس سے بڑی نفسیاتی کمزوری کیا ہو سکتی ہے, جذباتیت کا اس سے زیادہ کیا اظہار ہو سکتا ہے. اور یہ کون قوم ہے, لگتا یہی ہے کہ یہ مذہبی لوگ تھے, تورات کو اچھی طرح جانتے تھے جیسا قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ جانتے تھے حقیقتوں کو. تو اس کے باوجود ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہو جانا کہ بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو سنیں اور سمجھیں, وہ مارنے پر تل بیٹھے اور جادو کے ذریعے سے مارنے کی کوشش کی اور جادو کے ذریعے سے کمزور کرنے کی کوشش کی. ہمارے ہاں یہ انہیں آیتوں کی وجہ سے یہ بات مانی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا اور آپ 60 دن تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی, نہا لیا کہ نہیں نہا لیا, طہارت کے لیے وضو کیا یا نہیں کیا ہے. یہ قرآن مجید کی واضح نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے, واللہ یاسموک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل معصوم رکھیں گے لوگوں سے, بچا کے رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اوپر اس قدر جادو ہو جائے کہ آپ 60 دن تک نمازوں کا پتہ نہیں ہے, روزے کا طہارت کا پتہ نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر کھلونا ہو گیا رسول, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے وہ روایات جتنی بھی ہیں وہ بس لگتا ہے کہ گھڑی گئی ہیں, جادو کیا ہے یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے ان آیتوں سے, لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ واضح رہنا چاہیے. اگر اثر ہوا ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے, وما ہم بزارین بہی من احد الا باذن اللہ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بھی اذن شامل تھا. تو یہ اپنے رسول کے بارے میں کیا مطلب ہوا. تو اس لیے یہ بات ساری کی ساری انہی آیتوں کے خلاف ہے جو یہاں پر ہیں. ایک یہ کہ اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے, وہ بھی دلیل ہے, اور ان آیتوں کا بھی خلاف ہے. اب وقت ہو گیا جی, میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.